नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आजादी के बाद सबसे प्रगतिशील कदम बताया। कहा, ये सुधार भविष्य के लिए तैयार कार्यबल पारिस्थितिकी तंत्र में सहायक होंगे और देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार घुसपैठियों को बाहर करने के लिए कृतसंकल्प। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को समर्थन देने का आग्रह किया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक कारखाने में गैस विस्फोट में 15 लोगों की मौत। और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से गुवाहाटी में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को आज से लागू करने की घोषणा की। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 आज से लागू हो गई है। एक रिपोर्ट।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले एक दशक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक विस्तार किया है, जो 2015 में कार्यबल के लगभग 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि 4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और व्यापक बनाएगा, साथ ही राज्यों और क्षेत्रों में इससे होने वाले लाभ को भी अंतर्निहित करेगा। नए श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान प्रदान करेगा। इसके अलावा ये सुधार 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और एक वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी भी प्रदान करेगा। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन, जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा। नितिका गुप्ता के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। श्री मोदी ने इस निर्णय को स्वाधीनता के बाद अत्यधिक व्यापक और प्रगतिशील तथा श्रम केंद्रित सुधारों में से एक बताया। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में हवाई अड्डे पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। कलाकारों ने ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों के एक समूह ने प्रधानमंत्री के समक्ष शांति पाठ भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दुनिया के नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सम्मेलन में सहयोग मजबूत करने, विकास की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ, सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा परिवर्तन तथा शासन में सुधार सहित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर बात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और कई अन्य विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA नेताओं की बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार 4th G20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। जोहान्सबर्ग से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। इसके बाद वे नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष श्री कूस बेकर के साथ बातचीत करेंगे। वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों में तैनात अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी डिजिटल प्रकाशन आईओएल न्यूज ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच प्रगाढ़ परस्पर सम्मान, विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों का उल्लेख किया है। लेख में दक्षिण अफ्रीका को भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच और बाद में ब्रिक्स में शामिल किए जाने में समर्थन देने के लिए भी भारत की भूमिका की सराहना की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को मतदाता सूची का शुद्धिकरण करार दिया। उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध करने वाले और अवैध घुसपैठ को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों को आगाह किया।
चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है।
गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल BSF के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने देश से हर घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने संबंधी सरकार के दृढ़ संकल्प पर बल दिया। उन्होंने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए लोगों से SIR को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में शहरीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी बजट 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई। बैठक में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सिंगापुर में विभिन्न कंपनियों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ भारत के साथ मिलकर देश की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। श्री वैष्णव ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार तथा उद्योग मंत्री गान किम योंग से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे पुट्टपर्थी स्थित श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने पिछले 11 वर्षों में नागरिकों के लगभग 40,000 करोड़ रुपए की कुल बचत की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस योजना का शुभारंभ किया था। ये योजना अत्यधिक प्रभावशाली सामाजिक पहलों में से एक बन चुकी है। एक रिपोर्ट।
वर्तमान में देश भर में लगभग 17,000 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। सरकार ने अगले साल मार्च तक इस संख्या को 20,000 और मार्च 2027 तक 25,000 केंद्रों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। एम्स नई दिल्ली स्थित जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदने वाले कुछ मरीजों ने सरकार की इस पहल की सराहना की।
जन औषधि केंद्र से तो काफी लोगों को फायदा है। अगर हम प्राइवेट लेते हैं तो वो हमें रेट टू रेट मिलती है, जो MRP लिखी होती है वो मेडिकल वाले 1 रुपए भी कम नहीं करते।
लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवा मिलती है। ये तो सरकार की संस्था है, इससे गरीब की समस्या हल होती है।
इस योजना के उत्पादों में अब 2000 से ज्यादा दवाइयाँ और 315 सर्जिकल उत्पाद शामिल हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स, हृदय संबंधी दवाएं, मधुमेह रोधी दवाएं, दर्द निवारक और पोषण संबंधी श्रेणियां शामिल हैं। सस्ती दवाइयां सुनिश्चित करने से लेकर उद्यमियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ यह योजना सरकार के सबको सस्ती दवा स्वस्थ भारत की आशा के दृष्टिकोण को दर्शाती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दर घटाने के बाद 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू किया गया। इससे देशभर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बता रहे हैं कि कैसे अगली पीढ़ी के GST सुधार तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
नए जीएसटी सुधार से तमिलनाडु के किसानों, कारीगरों और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में परिधान, कढ़ाई और जरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे पारंपरिक वस्त्र और रेशम उत्पाद किफायती हो गए हैं। इसी तरह कॉयर मैट और सिंथेटिक से बने कपड़ों पर कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे राज्य की महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को मदद मिली है। इसके अलावा प्रसंस्कृत मछली पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे तटीय समुदायों को लाभ हुआ है। नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और तमिलनाडु की औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थिति को मजबूत करना है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो में आज भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के अनुसार दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
उड़ान के दौरान करतब दिखाते समय विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया और जमीन से जा टकराया। आपातकालीन बचाव दल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। दुर्घटना के बाद एहतियात के तौर पर प्रदर्शन स्थल को सील कर दिया गया। तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश होने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान में जैसलमेर के पास एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दुबई से विशेष संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना में वायुसेना के पायलट की मौत पर दुख जताया है। श्री सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में देश पायलट के परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ा है। वहीं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने तेजस विमान दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया है। पाकिस्तान में फैसलाबाद स्थित मलिकपुर इलाके में आज सुबह हुए गैस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बचाव अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट होने से एक इमारत सहित आसपास के ढांचे के ढह जाने की खबर है। फैसलाबाद आयुक्त कार्यालय ने बताया कि मलबे से सभी 15 शव निकाल लिए गए हैं। और अब बात खेलों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कल से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो 2025 के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। गोवा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के माध्यम से 125 उभरते हुए सितारे अपने विचारों को पटकथा से लेकर पर्दे तक पहुंचाने के लिए 48 घंटे की एक गहन फिल्म निर्माण चुनौती के लिए तैयार हैं। भारत के सबसे प्रतिभाशाली और नवोदित युवा फिल्म निर्माताओं के लिए ये एक ऐसा मंच है जो आधुनिक समय के निर्देशकों, अभिनेताओं तथा कहानीकारों की खोज करता है। केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन ने इस पहल की सराहना की है जो देश के उभरते रचनाकारों को वैश्विक निर्माताओं और रचनात्मक नेटवर्क से जोड़ती है। उन्होंने न केवल फिल्म निर्माण के बल्कि भारत की रचनात्मक भविष्य को आकार देने के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया। डॉक्टर मुरुगन ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने कौशल को निखारने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इस अनुभव का आनंद लें। डॉक्टर एल मुरुगन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने पणजी स्थित कला अकादमी में आज प्रतिष्ठित मास्टर क्लास श्रृंखला के शुभारंभ के साथ साथ फिल्मोत्सव को एक नया रंग दिया। देश के जाने माने फिल्म मेकर मुजफ्फर अली ने इफ्फी 2025 की पहली मास्टर क्लास शुरू की। इस मौके पर उन्होंने अपने पुत्र शाद अली के साथ करते हुए फिल्मों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद विभिन्न थिएटर्स में अलग अलग फिल्में भी दिखाई गईं। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
मौसम विभाग ने कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आजादी के बाद सबसे प्रगतिशील कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार घुसपैठियों को बाहर करने के लिए कृत संकल्प। और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से गुवाहाटी में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।